ప్రజాతం సకలమేశ్వ దాసిం భక్తిం నమో మహాప్రసన్నాయ కృష్ణ ప్రేమ సుదాయ ద్రవీ కౌంద్రచంద్రాయ నమో విష్ణుపాదాయ కృష్ణతీర్థాయ భూషణి పతిమాత్రచరిత్రాయ స్వాతిపాయే సదాయ నామ
कौन कहां जा रहा है, कौन कब मर गया या क्या हुआ, जो अच्छे अच्छे तो उनके कहने से पता लगा कि ठीक उसी समय में हो गए। ये महात्म जी के धर्म में आकृष्ट होकर के पीछे से जोग जोगड़ा सब कुछ छोड़ करके और इसमें प्रवेश किए थे, वैष्णव बने थे। उन्हीं के शिष्य हमारे गुरु जी के पिताजी थे, जिनका नाम याद है जो तो उनके पिताजी उनके शिष्य थे और माता जी उन्हीं के शिष्य थी, इसलिए वैष्णव परिवार के थे। जिस समय उनका जन्म हुआ बड़ी सुंदर थे,
माता भुवन मोहिनी देवी
और माता जी का नाम भुवन मोहिनी। जिस समय पैदा हुए बड़ी सुंदर, ऐसे की जैसे जोनाकी टोका होता है, जुगनू होती है, ऐसे उनसे तेज निकलता था, इसलिए उनका नाम जोना रख दिया। जोना वाली ज्योत्सना भी चंद्र की जैसे ज्योत्सना होती है, ऐसे बड़े सुंदर सुकांत के रूप में वो पैदा हुए। हाँ बोलिए। बड़े लड़के श्री प्रभुपाद के सन्यासी शिष्य दीक्षित और सन्यासी शिष्य प्रमोद कुमार जी और पीछे से उनका नाम हुआ
भक्ति केवल
भक्ति केवल पौलोमी बहुत ही विद्वान आदमी और वैष्णव लोग इनके भाषण बड़े सुंदर होते थे युक्तिपूर्ण होते थे और दूसरे नंबर पर ये थे इनको लोग भीम कहते थे और बड़े दयालु स्वभाव के थे अपने पिताजी की उंगली पकड़ करके जहाँ पर धर्म सभाएं होती जहाँ पर गीता पाठ होता भागवत का पाठ होता वहां पर बचपन से जाया करते उनका स्वाभाविक ये इनकी मैया शासक थी रूलर थी बड़ी कठोर थी कोई भी बच्चे बिगड़ने जाए इसका अपने आप को सबको कंट्रोल में कर रखती थी और सबको अच्छी तरह से पढ़वाती थी पढ़ी लिखी भी विदेशी महिला थी एक दिन जब ये स्कूल में पढ़ने लगे एक दिन ये बहुत रात से लौटे अपने घर में मैया रतिया लेकर के खड़ी थी शाम से रात के उठिया गंदे लौटों के साथ में घूमेगा इसकी बुद्धि खराब हो गई इन्हें रतिया लेकर के दरवाजे पर खड़ी थी आएगा तो उससे हम पीटेंगे और पूछेंगे ये कहां जब ये लौट करके आए करीब करीब 10 बजे रात में 10 बजे तक खड़ी रही कुछ न खाया न किया 10 बजे आए तो उनका हाथ पकड़ लिया कहां था तुम बतलाओ ये बतला नहीं रहे थे चुपचाप खड़े तुम बतलाएगा ना तभी पीटेंगे बताओ तुम कहां था उन्होंने कहा मैया देख हम लोगों ने एक कमिटी बनाया है और हम लोगों के आसपास के गांव में या अपने गांव में जो दुखी महिलाएं हैं पुरुष हैं दरिद्र हैं और रोगी होते हैं हम लोग जो तुम लोग खाने के लिए पैसे हमें देती है जल खाने के लिए हम लोग टिफिन के पैसे एकत्र करके रखते हैं अपने कुछ नहीं खाते हैं और उससे गरीबों की दिन खुशियों की सहायता करते हैं अभी हम एक गांव में एक बुढ़िया महिला है उसके पति नहीं है लड़का नहीं है उसको घर नहीं है कुछ नहीं खाने के लिए भी कुछ नहीं और उसको कलरा हो गया और बहुत बीमार है मरने मरने हो गई कोई देखने वाला नहीं था मैं उसके घर में गया बेटा जी खाने के लिए नहीं है और मर छटपटा रही है पानी देने के लिए कोई नहीं मैं साथ ही साथ में डॉक्टर को बुलाया डॉक्टर आया उसके लिए पैसे की व्यवस्था थी औषधि की व्यवस्था थी पत्ते की व्यवस्था थी और अपने साथियों को इसके बाद में लगा करके एक दूसरे साथी को बैठा दिया है वो वहां पर आया और मैं अभी घर में आया और थोड़ी देर के बाद में मुझे फिर जाना पड़ेगा उस साथी को छुड़ाने के लिए जो फिर मैं जाकर के रात में जब तक के उसकी सेवा करूँ मैया के हाथ से लटिया भी आपके हाथ से छल खड़ा है हमारा बेटा इतना दयाल मैं कई कठोर स्वभाव की और उसको उन्होंने आलिंगन कर लिया ऐसे दयालु प्रारंभ के जीवन के प्रारंभ थे दयालु किसको कहते हैं जीव दया कृष्ण नाम सब दया किसको कहते हैं किसी को एक कपड़ा देना नहीं कपड़ा देना जानता नहीं है उन्होंने उसको रोगी की सेवा की वो तो मर जाएगी किंतु हृदय में दया होनी चाहिए बच्चों में बड़े दयालु होते हैं लौकिक रूप में भी पारलौकिक रूप में भी अभी की जो दया है काम में नहीं आती फिर जिसको देते हैं वो आपका शत्रु भी हो सकता है और फिर दरिद्र हो जाएगा फिर मरेगा एक दिन किंतु परमार्थिक दया क्या है जिस दया के करने के बाद में फिर किसी दया की जरूरत थी अमन दो उदया दया उसका बंद नहीं हो सकता है उसका खराब कोई नहीं होगा अभी मान लेके किसी की लड़की की आपने शादी करा दी कुछ दिन के बाद में आपका शत्रु हो सकता है अभी जो शत्रु है वो शत्रु मित्र हो सकता है इस दया का और फिर वो भूखा मर रहा है कुछ दे दो फिर कुछ दिन के बाद में फिर वो मांगेगा किंतु जिसको परमार्थिक दया करो जो तुम कृष्ण का दास है एक भी जीव को जो संसार में लगा उसकी एक रुचि को परिवर्तन करके भगवान में लगा दिया जाए, उसका जन्म जन्म जन्मता उसका मंगल होगा, कल्याण हो जाएगा। इसे बढ़कर के कोई दया नहीं। एक भी जीव को यदि आपने किसी प्रकार से उसकी भावना को मोड़ करके भगवान की तरफ में लगा दिया, इसे बढ़कर के संसार विश्व में कोई दया नहीं है। वो फिर जन्म मरण से सदा के लिए बाहर होकर के कृष्ण की चरणों में गोलोक वृंदावन में जाएगा। किंतु ये संसारिक दयाओं का ऐसा ही फल होता है। एक मृग राजा को जानते हैं, उन्होंने करोड़ों करोड़ों गाय दान की, किंतु फल क्या हुआ? किसी ब्राह्मण को संतुष्ट नहीं कर सके और अंत में उनको गिरगिट होकर के आना, यही तो दान का। इसलिए गुरु हमारे गुरु जी पीछे से श्रीभक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी के यहाँ आए और असल दया कहते हैं कि इसको इन्होंने बतलाया और तब भगवत कथा के प्रचार में और गुरु की सेवा में वैष्णव की सेवा में अपना सारा जीवन लगाया। बोलिए
belonged to a Jimidar family. Jimidar was landlord. They are of administering nature. So she was a very expert administrator and ruler. So a sort of dominator. And Param Guruji's nature was on his mother. She was very much intelligent. He always wanted to control her children so that they should not be spoiled, they should study well, and they should do very good in their life. Param Guruji was from the very beginning very much interested to go to spiritual assemblies. He used to go with his father when he was very young.
Childhood.
When he was in childhood, holding the finger of his father, he used to go to the spiritual assembly and listen to those discussions very carefully. Maharaj is explaining, though he was on his mother, but from the very beginning, his heart was very, very soft. He was full of mercy. Once, what happened that he came very late in night, at his house. His mother, who was already a strict administrator, she was waiting for him since long time. At about 10 p.m., he did not come up. She was very much angry and in anxiety also. Holding a rod, a stick in her hand, she was waiting without eating and in anxiety. At about 10 p.m., he came. When he came, she held his hand and chastised him and asked that, tell me where have you been, I will bring you otherwise. You are spoiling your time with playing this notorious boy. First he could not speak, he remained mum, but when she said that, speak otherwise I will beat you, at the time very hesitantly he said, look, we have formed a committee of some students, some boys, and there we are collecting some funds. From where are you getting funds? How the funds you give for us? Eating, tiffin, you know tiffin? Pocket money. In English we may call it pocket money. Whatever pocket money you are giving to us, we don't eat from it. We are collecting it. And the purpose of this committee is to serve poor and needy people. Just nearby, there is an old lady. She doesn't have any relative and any person to look after her. She has got cholera. She is very much sick. So I went to her house. I found that she was crying with pain. I arranged for a doctor for her and medicine. I also collected money and I just gave some medicine to her. I arranged a boy who is looking after her right now, and now I have come here. Probably very soon I will have to go again there. When his mother listened to him, her heart started bleeding. Tears came out from her eyes. She said, oh, my child is so much merciful. So Maharaj is explaining here very interesting point. He said, what is Daya? Daya is mercy. Mercy is not an act that you are performing for any physical betterment of any person. If you give medicine to a person, he will be alright, but finally he has to die. If you give some clothing to some person, he may just get relief, but quite temporary, it is not a permanent relief. Maharaj is explaining, in fact, mercy is a thing which resides in the heart, can be manifested from the very beginning. So his guru was having mercy in her heart from the very beginning of his life. And when he came to his guru, at that time he could understand what is the real meaning of mercy. Real meaning of mercy is that you show it, shower it on the living entities for their permanent betterment. If you just change the taste of a single living entity for Krishna, he will be liberated from life and death and will go to Golok Vrindavan. If we conduct such mercy on living entities, this is the real mercy. So already existing mercy in the heart of Param Guruji, that was transformed for the spiritual mercy and he is distributed to all.
होनहार भगवान के बहुत ही कले जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उनके लंबे लंबे अच्छे अच्छे हरे भरे पत्ते हों तो समझे कि ये बहुत अच्छा पेड़ हो और फलदार होगा। ऐसे ही जीवन में पहले उसको देख करके ये बात कोई समझ सकता है कि ये जीवन में बहुत ही उन्नत व्यक्ति होगा और बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति होगा। इनके जीवन ऐसा है, जीवन ने कभी भी स्वार्थ उन्हें इनके जीवन में देखा नहीं। संतों के जीवन में निस्वार्थ भावना रहती है, पहली तो ये निशानी है। यदि किसी वर्ल्डली चीज में उनका अटैचमेंट हो तो वह संत नहीं हो देखा जाता है। इनके जीवन में बचपन के प्रारंभ से ही अपने लिए कुछ उन्होंने किया नहीं, यहां तक भी मठ में आए इनके पास में कभी एक पैसा नहीं रखा, जो कुछ हुआ था प्रभुपाद की सेवा के लिए लगा दिया। प्रभुपाद जी अपना सारा वेदांत ग्रंथ इनको दिया था, उनको कहते थे तुम दोगला है, दोगला माने मूर्ख, मूर्ख माने इस रूप में नहीं, अपने लिए कुछ करता नहीं। संत लोग अपना आप कुछ है ही नहीं है, भक्तों के लिए सर्वस्व करते हैं, हर गुरु वैष्णव की सेवा करते हैं। इसलिए उनके जीवन के प्रारंभ से ही उसमें ऐसा कोई स्वार्थ ही नहीं देखा गया जो अपने लिए कुछ अर्थ है। प्रभुपाद जी के अप्रकट होने पर जितने सन्यासी थे 2-5 लाख रुपया कलेक्शन करके बड़े बड़े मठ बनाए, किंतु हमारे गुरु जी प्रभुपाद जी के अप्रकट होने पर एक पैसा नहीं था। खाली हाथ आए, आज देखो जैसे आप भारत वर्ष में क्या विदेशों तक में सर्वत्र उनके बड़े बड़े मठ और ये सब हो रहे हैं और कितने शिष्य इत्यादि हैं। तो हम लोग भी वायदा में स्वास्थ्य रूप में हरि गुरु वैष्णव की सेवा करेंगे, अपने लिए नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। भगवान की बड़ी कृपा है, अकिंचन देन ही अकिंचन के ऊपर में भगवान की कृपा होती है। यदि अकिंचन नहीं रहेगा, प्रहलाद महाराज जी ने कहा कि निष्किंचन उनके चरणों की धूलि से यदि अभिषिक्त नहीं हो गए तब तक हरि भजन नहीं होगा। इसे निष्किंचन गुरु जी महाराज अंत तक निष्किंचन है। जब अप्रकट हो गए उनके पास में एक पैसा हम लोगों ने नहीं पाया, कुछ भी उनके पास में सब कुछ है। हम लोगों ने भिक्षा से इधर उधर से उनका विलम्ब उत्सव इत्यादि सब कुछ मिला, एक पैसा भी नहीं। एक बात हमने ये जो कुछ बातें सुनी है गुरु जी के मुख से सुनी है, मैं उनका बड़ा मुंह लघु था। मुंह लघु समझते हैं, मुंह लघु मैंने दशा पड़ता नहीं, उनसे सब समय प्रश्न किया और सारी उनकी सेवाएं कपड़े धोने से लेकर रसोई बनाना लेकर के सब सेवा में करता था। यहाँ तक कि बहुत सी सेवाएं जो मैं नहीं अपने मुख से कहना चाहता, मैं भी मृत्यु से जाना नहीं उनकी सेवा के लिए, उनके सेवकों के लिए। तो वो उनके जीवन में हमने बहुत से जो कुछ वो पहले का था वो मैंने उनके मुख से सुना। दौलतपुर कॉलेज में पहले वो
कलकत्ते के उत्तर पाड़ा कॉलेज में वो भर्ती थे। उस समय में अभी तक गुरु जी से अपने नहीं मिले थे, वहां पर उनकी एक पीछी माँ थी, मैंने बुआ जी थी, उनका नाम सरोज वासिनी था, बहुत ही उन्नत श्रेणी की विदुषी महिला थी, बहुत तत्पर्य और सब सन्यासी लोग उनको प्रणाम करते थे, महिला होने पर भी सब महिला लोग उनको प्रणाम करते थे, दीदी दीदी कहा करते थे, और बहुत विद्वान, समस्त सिद्धांतों को जानने वाले, और कैसी थी, कवि थी, सक्षर मात्र में सारी कविताएं नई नई बनाती थी। प्रभुपाद के जीवन में, हमारे गुरु जी के संबंध में, यहाँ तक कि बाबू महाराज जी के संबंध में, हम लोगों के संबंध में कविताएं सब बना करके साथ ही साथ में वो बना दी थी। तो वो सरोज पीसी माने प्रभुपाद के संबंध में बहुत कुछ बतलाया, और उनको अपने साथ लेकर के प्रभुपाद जी के साथ पास में मायापुर में लिए आए।
वो प्रभुपाद जी की शिक्षा थी,
प्रभुपाद की शिष्या थी, पहली शिष्या थी। प्रभुपाद महिलाओं को मंत्र नहीं देते थे, उनको दीक्षा नहीं देते थे, तो एक बार वो आई, उन्होंने कहा कि स्त्रियों में क्या स्त्रियां क्या जीव नहीं है, किस दोष से उनको दीक्षा नहीं देते हैं, किस क्यों, क्या उनका कल्याण नहीं होना है। तो उनकी बातों को सुन करके
उनका जीव नहीं है, उनका जीव नहीं है,
क्या उनको भजन करने का अधिकार नहीं है, क्या उनको भजन करने का स्त्री का अधिकार नहीं है। प्रभुपाद जी इसका उत्तर नहीं दे सके, और बड़े प्रसन्न होकर के सबसे पहली बार उनको शिष्य के रूप में प्रभुपाद जी को हमारे गुरु जी को वही लेकर के आए। गुरु जी उनको बहुत आदर करते थे, उनकी प्रत्येक बात को मानते थे, गुरु जी से इनके भेद होने पर गुरु जी प्रभुपाद जी बड़े प्रसन्न हुए, यह बात उन्नीस सौ सोलह का उन्नीस सौ सोलह बोला नहीं। इसके बाद में बीच बीच में आने लग गए, हरिनाम उन्होंने उन्नीस सौ सोलह में दिया, और इसके बाद में कॉलेज में पढ़ते थे, उत्तर कॉलेज पर कर सकती उसी समय में बड़े बड़े अपने प्रिंसिपल से और बड़े बड़े प्रोफेसर से बात होती शुरू की। उस समय में एम ए में बी ए में था गवर्नमेंट के द्वारा, ये क्या करते हैं रिकॉग्नाइज था, चैतन्य से सामरिक
सिलेबस में
सिलेबस में था, उसका पहला पार्ट आदि खंड था डी एन ए और बाकी था एन ए। तो उसमें पहले खंड में जब ये पढ़ते थे तो उसमें है पदम की तब कविदत सप्तम जग ज्ञान और स्वयं, और वे ज्ञान पांच चीज को कहते हैं, और दूसरा जीवन सुख है नित्य सदा कृष्ण कर्तव्य शक्ति वेदा वेद, वो लोग इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सके जब वेदा वेद प्रकाश क्या है और जीव का स्वरूप क्या है, इसी तरह से नहीं करना। गुरु जी से पूछा तो गुरु जी ने उनको स्पष्ट करके बतलाया प्रभुपाद जी का विचार। अक्षय ज्ञान किसको कहते हैं, अभी हम बताएंगे तो बहुत से लोग पूछेंगे तो कोई बदला भी नहीं सकते। अक्षय ज्ञान कौन है, सिर्फ ही अक्षय ज्ञान अकेले है, किंतु अकेले में कैसा बहुत प्रदेश करके एक अंक है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एंड डाइवर्सिटी इन यूनिटी। कृष्ण कहने से जीव जगत उनके परिकर इत्यादि सब कुछ मालूम होता है, सब मिला करके ख अपने बीच ब्रह्मांड के भाषा पा, यदि ब्रह्मांड रहे तो पता किसके रहे, और केवल यही जगत नहीं, गोलोक वृंदावन बैकुंठ इत्यादि का शिक्षक के लिए खाता है, भरण पोषण कर रहा है और वह बने उनके नियामक हैं। नियामक बने संचालक विश्व सारे इस विश्व का उस विश्व का सशस्त्र शक्ति के लिए उत्पन्न ये सब का वो मूल संचालक है। वह अभिप्राणी में जो निवास करते हैं, अभिप्राणी जिनमें निवास करते हैं वो भगवत शब्द का है। कृष्ण की शक्ति है, विशेष करके तीन शक्तियां के शक्ति जीव शक्ति माया के शक्ति से सारा वैकुंठ जगत प्रकट हुआ है। नंद जसोदा वृंदावन के चारे परिकर उसे प्रकट हुए और तटस्था शक्ति से हम जैसे भी और ये माया शक्ति से सारे विश्व ब्रह्मांड एक ही नहीं लाखों को विश्व ब्रह्मांड प्रकट हुए हैं। ये सब मिला करके भगवत शब्द वाक्य है, ये सब को मिलाकर के कृष्ण एक है। ये जगत वही एकमात्र अद्वितीय परतत्व है, अद्वैत उनकी शक्ति से सारे विश्व में उनकी शक्ति से सारे वैकुंठ जगत की सारी चीजें हुई है और अंत में उन्हीं के लिए सारा विश्व ब्रह्मांड है। इसलिए ये परतत्व है, ये दोनों करके आप करके सभी लोग हो गए। सतर्कता शक्ति क्या है? कोई फायदा उसी नहीं थी, गुरु जी ने उनको बताया इस तरह से जड़ी जड़ी कुछ चेतन चेतन के कुछ कठिन सिद्धांत आते थे तो वो लोग कभी भी उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे। गुरु महाराज जी को गुरु जी ने सोचा इनके पास में बराबर के क्या सीखेंगे, जब प्रिंसिपल को और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जिसके वो जो बातें थे जब उन लोगों को नहीं पढ़ाता हूं तो उनसे क्या बात पूरी पढ़ रहे हैं। उसे हमारा कुछ लाभ नहीं है कि जड़ विद्या के सीखने से कुछ भी लाभ नहीं है। जड़ विद्या जो तो माया जीवो के परे एक गाथा, ये जड़ विद्या का कुछ भी मूल्य नहीं है। वो क्या करती है, जीव को गधा बना देती
है। इतना भजन है बात है
कृष्ण के शरण में ये जड़ विद्या है भाषा होती है, इसलिए जड़ विद्या के ऊपर में निर्भर नहीं रहना चाहिए। भगवान की विद्या जो अक्षर तत्व है, ब्रह्म तत्व, भगवत तत्व, पशु तत्व, इस पर निर्भर रखना चाहिए। संदेश एक हजार साल कौन से कॉलेज में गए, कौन से कॉलेज में, किसी भी कॉलेज में नहीं गए। श्रीवास आचार्य कौन से कॉलेज में गए, हमारे बहुत कुछ लोग दासवाज महाराज कौकवी क्लास नहीं जाते थे और बड़े बड़े विद्वान प्रभुपाद जैसे विश्व विजय जैसे उनके चरणों में नतमस्तक हुए। ये कौन सी विद्या है, यही परमात्मा की विद्या है। यदि कृष्ण भक्ति है तो सभी कुछ विद्या है और कृष्ण भक्ति नहीं है तो कोई भी विद्या नहीं है। ऐसा सोच करके उन्होंने कॉलेज में जाना बंद कर दिया और संपूर्ण रूप से 1919 ईस्वी में प्रभुपाद के चरणों में अपने को आत्मस्वीकृत कर दिया। प्रभुपाद बड़े
for himself. And Maharaj is saying, it was seen
Then when Srila Prabhupada disappeared and went into his Nityalila, at that time many other sannyasis of mutt. They had many money, rupees, and they expected their own mutt. But Param Guruji had nothing with him. He was penniless and he started his mutt without any money at all. He was akinchan. Akinchan means who does not have anything material in his life. Only these people can do real bhakti, otherwise bhakti cannot be done. It is said in the scriptures that even if one wants to advance in Krishna consciousness, he should bathe in the dust of such akinchan people. Maharaj is explaining that when Param Guruji entered into Nityalila, at that time also there was no money. He had no money at all. And somehow or other, everything, all the money and these things, his disciples protected. But he left over no any money. Maharaji is now explaining one thing, that he was very much close to his guru, Gurudev. He is using in Hindi the word Muhulaku. He used to talk to him very
frankly,
intimately, and without any
hesitation.
Yes. Vishnu Bhava, which we may call, at the same time, he was doing his very intimate services also. He was washing his clothes, he was preparing his prasad, and many other such services which Maharaj said that I may not be able to explain also, he was doing. And he did all those services for which his life was also at stake for his Guruji, to serve his disciples and Guruji directly. So, because of such services, he became so close to his Guru, Guruji, that he used to talk very frankly. And Param Guruji used to tell him many things. Maharaj said, whatever I am telling to you are those things which I have heard from my Guru Maharaj. So, Param Guruji, when he was studying in Calcutta, he was studying graduation in college in Calcutta. At that time, his aunt, Bhuva, is called Sishima. Her name was
Sarojvasini Devi.
She was very reverend lady. And even many sannyasis used to go before her. She was intelligent and poetess. Even in the glory of Prabhupada and his disciples, he has prepared many poems. She was first lady disciple of Srila Prabhupada. Before that, Srila Prabhupada never gave initiation to any lady. And then she went, she said that, I intend to ask you a question, that are ladies not living in the city? Do they have no right to enter into bhajan? So when Prabhupada heard these things from Sishima, at the time he gave her initiation. She took to Prabhupada, that she took to her nephew, to Sri Prabhupada. When Param Guruji met Sri Prabhupada first time, at that time he was very much pleased, as well as Prabhupada was also very much pleased. In 1916, first time they met. He took Harinam and he learned all the scriptures very fast in guidance of Srila Prabhupada. Maharaji is explaining at that time in Calcutta College, in graduation and post-graduation, Chaitanya Charitamrita Manisvasan Sadeva. Adi Lila was being taught in graduation and Anta Lila may be taught in post-graduation. Then Maharaj is saying that principals and head of the department of those colleges, they used to get stuck up in many things of Chaitanya Charitamrita, especially when the question used to come about Atvaita Gyan Tattva and Veda Bhed Prakar, Tathagata Shakti. These things were not clear to these people also. At that time, Param Guruji used to explain that what does it mean by Advaita. Maharaja explained to Unity is diversity and diversity is unity. When we say Krishna, then Krishna is not alone. So Krishna is alone, but he is with all his potencies. And all his potencies are also not separate and discrete. Because they all belong to Krishna, so they are one in diversity. And this thing is to be understood. Bhagavan means, Maharaj is saying, who looks after and who keeps. And who means who controls. What does he control? He controls material world, he controls spiritual world, and he controls the marginal potencies and our potencies. Who means who lives in even every living entity and in whom every living entity lives. So this way, he is controller of all the potencies, his potencies which looks after his spiritual world, the rest of potencies, marginal potencies, which is looking after all living entities, and external potencies, which is looking after all these millions of universes. So, Advaita means sum total of everything, and then one. This is Advaita. Maharaj is explaining, when Param Guruji was thinking that even principal is learning from me, even head of the department is learning from me, what is the use of my sitting here? Yes, I need to teach them. So I think this is Jnanvidya. Jnanvidya is sometimes obstacle in bhajan. So I should not get this obstacle in my life. He gave up his college life and in 1919 he totally surrendered to his Guruji and he said that I want to learn the spiritual knowledge. I don't understand where Srivast Acharya has taken the graduation degree. He has not gone to any college. Both because Babaji has not attended any college. But before them, many great learned persons, like Sri Prabhupada, he goes down before both because Babaji Maharaj. So the real education is the spiritual education, which is called real India.
एक समय की बात है, मैं संक्षेप में दो एक बातें बताऊं। एक समय की बात है, गुरुजी मायापुर में प्रभुपाद जी के पास में थे। तुलसी मैया ने एक पत्र लिखा और वो पत्र प्रभुपाद जी के नाम से था। प्रभुपाद जी के पास में पत्र था। प्रभुपाद जी ने पत्र पढ़ने के बाद में विनोद चिराई ब्रह्मचारी को अपने पास में बुलाया और उससे बोले, देखो तुम्हारी भैया का जी पत्र आया है, तुम्हारी पीड़ा में वो मर रही है और उसका अंतिम पत्र है, वो तुमको एक बात देखने ना चाहती है, सब समय विरोध विरोध करती है, कहते कहते और मरने वाली है। इसलिए एक बात उनसे प्रार्थना किया है कि मैं उनको भेजूँ और तुम्हारी भैया के पास एक बात भेज कर भी चला। उन्होंने विनोद को बुलाया और कहा, तुम्हारी भैया का पत्र है, तुम घर में जाओ और भैया से भेंट करके चले आओ और वो भी बहुत बीमार आज ही चले गए। उन्होंने गुरु जी को अपने पास से किराया का पैसा दिया और हमारे गुरु जी वहां से चले आए। जब शाम हो गई तो प्रभुपाद ने दूसरों से पूछा, अरे विनोद को मैंने कहा था अपनी भैया को साथ में जाने के लिए, वो गया कि नहीं देखा तो सोचे सोचे उन्होंने देखा एक कोने में बैठ करके हरि नाम कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से पता लगा सकते हैं। प्रभुपाद जी ने उनको बुलवाया, तुमने कहा कि अपनी पूरी भैया और मर रही है, विनोद विनोद कर रही है, तुम जाओ एक बार भेंट कराओ, तुम क्यों नहीं गए? तो कुछ नहीं बोल रहे, उनके बाद किसी ने कोई बदलाया कि गुरु जी कोटि कोटि जन्मों के बाद में आप जैसे गुरु जी हैं और मैं समझता हूं कि आपके लिए क्या हमारा जीवन सफल हो रहा है। मैं कुछ भगवत तत्व समझ रहा हूं और भजन करने की चेष्टा कर रहा हूं। आज मैं लौट करके भैया के पास में जाऊं और भैया जी भी कह रहे कि बेटा मैं मर रही हूं, आपको एक बात करना, हमारी अंतिम नाम जाता है कि तुम घर में रहकर किसी बात का भी करते थे घर देखो, नहीं तो कर्म मरो बर्बाद हो जाएगा, मैं अंतिम यही कभी जाता हूँ। तो
समय को मैं कह दिया करूंगा, मैं अभी अंतिम मामला का पूरा करने के लिए घर में विवाह शादी करके अपना सारा जीवन अनंत जीवन में बर्बाद कर दूंगा। आपसे भी करके तो आप ले जी के आंखों में आंसू आ गए। कभी यही बड़े प्रसन्न हुए। माता पिता जन्मे जन्मे